اللہ اکبر. سالن جو ہے سالن کے ساتھ چٹنی نہ ملے تو ہمیں اچھا نہیں تھا. سالن کی کیا باتیں ہیں. جی اصل میں ہم ذائقوں کے حریص ہو گئے. مجھے ان کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنا ہی لگا کہ یہ دنیا کے دجل سے نکل گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اس تھریش ہولڈ سے نکال کے اوپر, وہ کہتے ہیں نا کہ تیری منزل آسمانوں پہ. ہم تو اس دنیا کی حب میں پھنس گئے. کھانا پینا, ایٹ ڈرنک, بی میری. جی آپ پیچھے سے فرزانہ.
شخصیت ہوگی رحمت اللہ امام بخاری کی کہ جن کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کر رہے تھے, وہ جن بزرگ کے خواب تھے.
جی ابھی تو آپ نے پہلی شخصیت پڑھی ہے, آپ کو اب آگے ہم مسلم شخصیات پڑھاتے رہیں گے. یہ ہمارے اس کورس کا باقاعدہ حصہ ہے. جی آپ پھر صحیح کام. اصل پتہ کیا, یہ جو کل کے ہمارے سبق میں بات چل رہی تھی نا کہ بچوں کو کیسے سمجھائیں ان کی دنیا کی ترقی پہ, اصل جو ہمارا اور تو جرم تو تھا ہی سو تھا, ہم نے اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری سے کاٹا ہوا ہے. اتنا آسان ہے ہمیں آج پھر اپنے بچوں کو دوبارہ واپس لا کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا کو باقیات صالحات میں بدلنا اگر آپ ان کو ہسٹری سے جوڑ دیں. ہم ہمارے دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے اور بچوں پہ تو بہت ہی اثر ہوتا ہے اس چیز کا. جی آپ سمینا.
تین دن میں جو پرانے کا ختم کرتے تھے اور
جی تین دن میں قرآن پاک, ہمارا آخری قرآن رمضان میں ختم ہوتا ہے تو ہو جائے تو بڑی بات ہے. کچھ کا تو بسم اللہ پہ ختم پڑھ لیا, اب مولوی صاحب کو جوڑا دے دیا ختم. جی نوشین. ان شاء اللہ ہوں گی, خوبیوں پیدا کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں ادھر. ٹھیک ہے جی خما, آپ نے کیا سوچا پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے؟ یعنی یعنی ہم پریشر نہیں برداشت کر سکتے, ہم تو اسٹوڈینٹس کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے, سوسائٹی کا کہاں کرنا ہے ہم نے. ہم تو چھوٹی سی بات پہ اپنی بات پیچھے کر لیں, نہیں نہیں ناراض ہو جائیں گے, یہ ڈر جائیں گے, یہ ان کے لیے ٹو مچ ہے. لیکن ان اور یاد رکھیے وہی جمتا ہے جس کو اپنی بات کا یقین ہوتا ہے. چلیے تلاوت سنائیں پچھلی آیتیں جو ہمارا لیسن پورا ہونا ہے. جی آن لائن پہ امید ہے آواز بھی ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی شیئر کیا کریں. تو جہاں سے آگے تفسیر شروع ہونی ہے ارم, وہاں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے پچھلا سبق پورا پھر اگلا سبق انشاءاللہ.
Thank you.
तिलावत सुनकर ऐसे लगता है कि दिल के ऊपर एक ओस बरसती है ना, और कुरान जैसी कोई चीज नहीं है। कुरान की तफसीर लोग कहते हैं, मैं सोचती हूँ कुरान के अल्फाज। तो आइए आगे देखते हैं। हकीकत में आयतें सुनते वक्त इंसान का दिल चाहता है कि कुरान रुके ही ना। आयत 50 से देखेंगे, यहां से अब आदम और इबलीस का किस्सा दोबारा। पीछे हम तीन बार ये पढ़ चुके, ये चौथा मुकाम है जहां पे ये किस्सा आएगा। आइए देखते हैं आयत 50। वइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ली आदम, और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि सजदा करो आदम को, फिर क्या हुआ? फसजदू इल्ला इबलीस, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अगर आपको सूरत बनी इसराइल याद आ रही हो तो पीछे भी शुरू में बात की आपसे कि सूरत बनी इसराइल के भी सातवें रुकू की पहली आयत बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि यहाँ सूरत कहफ की, आदम और इबलीस का किस्सा 7 दफा कुरान पाक में आता है। बाकी 6 मुकामात पर तो इसका जिक्र नहीं, लेकिन इस हिस्से में आज हम देखेंगे कि यहां से पता चलेगा कि इबलीस जिन्नों में से था, क्योंकि कान मिनल जिन्नी, वो जिन्नात में से था। फिर क्या हुआ? फफसा कान अमरी रब्बी ही, बस उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। फा जो है ना इल्लत है, इल्लत कहते हैं बीमारी को, वजह, रीजन, यानी उसकी वजह क्या थी इस चीज की, चूंकि जिन्नात में से था इसलिए नाफरमानी का मर्तकब हुआ। मतलब यह कि अगर फरिश्ता होता तो कभी नाफरमानी ना करता, क्योंकि फरिश्तों के बारे में अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं सूरह तहरीम आयत 6 में, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। वो फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और जो भी हुक्म उनको वो दे वो वही कुछ करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाए। लिहाजा अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं, अफतन तखिजू नहु व जुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तो क्या तुम बनाते हो इसे और उसकी औलाद को दोस्त मेरे सिवा, हालांकि वहुम लकुम अदू, वो तुम्हारे दुश्मन है। ये क्या रहा है? हमें कहा जा रहा है कि देखो जिस इबलीस की इबलीस है, जिसने ना की, जिसने ऐसे कि जिसने अल्लाह की नहीं मानी, तुम उसकी मानते हो। जानते बूझते कभी को अपने दुश्मन की बात मानता है? सोचो कि बाप के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली औलाद का क्या हाल होगा। वही होगा जो उसने बाप के हक में चाहता कि उनको जन्नत से निकाल दें, तो वो तुम्हें भी निकाल देगा। और तुम्हें अल्लाह ने कितनी शान दी, अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों को तुम्हारे सामने झुका दिया, तुम्हें दुनिया की खिलाफत दी, और क्या तुम मेरी सारी बातों को छोड़कर इबलीस की बातें मानते हो? कोई बात नहीं, बिस अल जालिमीन बदला, क्या बुरा बदल है इन जालिमों के लिए। यहां बदल से मुराद अल्टरनेटिव है, लिख लीजिए। यानी तुमने क्या अल्टरनेट लिया कि नाउसुबिल्ला अल्लाह का अल्टरनेट शैतान को बना लिया? क्या तुम्हारी चॉइस है? तुम्हें क्या हो गया? ऐसी बातें करते हो क्या तुम? उसकी बातें करते हुए ये नहीं सोचते कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया और कितने प्यार से बनाया, कितनी मोहब्बत से बनाया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दुनिया में क्या कुछ बना दिया और तुम इन चीजों को कोई अहमियत ही नहीं देते। चलो कोई बात नहीं, अगली बात का जवाब दो। आयत 51, माशहद तुम खलक समावाती वल अर्दी वला खलक अनफुसिहिम, मैंने इन्हें गवाह नहीं बनाया था आसमानों और जमीन की तखलीक का और ना ही इनकी अपनी तखलीक का। यानी जिस वक्त जमीन और आसमान बने थे, मैंने उस वक्त इन सब को खड़ा नहीं कर लिया था कि आओ देखो मैं ये बना रहा हूं ताकि कल बाद में तुम इसकी गवाही दो, बल्कि जब इनको पैदा किया था उस वक्त भी इनको गवाह नहीं बनाया। क्योंकि वमा कुंत मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अदुदा, मैं तो बहकाने वालों को अपना मददगार बनाने वाला ही ना था। क्या मतलब है इस आयत का? डांट की हद है कि ये जो तुम शैतान और उसके गिरोह को मेरे बराबर लाके खड़ा कर रहे हो, मुझे छोड़कर अब उसको अपना दोस्त बनाते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जमीन और आसमान की तखलीक और खुद अपनी तखलीक के मौके पर तुम भी गवाह नहीं हो। यानी तुम दुश्मन की बात मानकर के अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखते हो, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब क्या है? यहां देखिए कि ये सिर्फ शैतान का जिन होना और उसकी बात का करके आगे बढ़ जाना, असल में इशारा फिर मक्का वालों की तरफ और आज हम सब की तरफ है कि तुम शैतान की बातें मानते हो, उसको शरीक बनाते हो। उसकी बातें मानते हुए तुम्हें ये बात भूल जाती है कि दुनिया मैंने बनाई, तुम्हें मैंने पैदा किया, और एक बेबस हस्ती को पूछते हो इतनी बड़ी जात को छोड़कर तुम्हें क्या हो गया। यानी असल में ये सारा हिस्सा जो ये इंसानों की हमाकत बताई जा रही है कि चलो रब को छोड़कर किसी को पूछते, किसी खैर वाले को पूछते, तुम शैतान की बात मान रहे हो। और यहां देख लीजिए कि शैतान की पूजा से मुराद उसकी इतात है। सूरह बकरा सूरह फातिहा से आपको इबादत के बंदगी के तीन मानी लिखाए थे, बंदगी इतात वर्शिप। तो यहां इतात वाला शिर्क है कि तुम इतात करके उसकी इबादत करते हो, तुम्हें क्या हो गया? और ऐसी बातें करके तुम क्यों अपने आप को बुरा पेश करते हो? लिहाजा तुम अपने आप को सोचो, तुम क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और ये जो लफ्ज है ना मुदिल लीना, मुदिल की जमा है, दुआत लाम लाम इसका रूट है, मीम को ना डालिएगा अंदर, वो तो फाइल का है, यानी भटकाने वाला, वही लफ्ज है जो दुआलीन में पड़ा। और अदुदा कहते हैं मददगार को, किसी चीज को अपना मददगार बनाना, उससे कोई मदद ले लेना। मतलब यह है कि मैं किसी की मदद नहीं चाहता, तुम ऐसे लोगों की बात ना मानो। आगे बात चल रही है, फिर इकट्ठी इसको देख लेंगे। आयत 52, व यौम यकूलु नादू शुरका इयल्लज़ीना ज़अमतुम, और जिस दिन वो कहेगा कि पुकारो मेरे इन शरीकों को जिनका तुम्हें जोम था। कौन कहेगा? अल्लाह फरमाएगा। लेकिन आप नोट करते हैं एकदम इनडायरेक्ट सीगे में चली जाती है बात। कुरान पाक में कभी बहुत कम जगह पे वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम आता है। अल्लाह ही ये बात कह रहा है और अपने आप को थर्ड पर्सन में पेश कर रहा है। ये एक बात की अहमियत को बढ़ाने वाला अंदाज है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं नहीं कहूंगा बल्कि वो कहेगा, यानी तुमने जिसको दूर समझा तो फिर मैं भी उसको तुमसे दूर ही कर देता हूं। क्यामत के दिन वो पूछेगा किधर हैं तुम्हारे वो सारे शरीक जिनके बारे में तुम्हारे गुमान थे कि ये तुम्हारी मदद करेंगे। फदाउहुम, तो वो इनको पुकारेंगे लेकिन फलम यस्तजीबू लहुम, मगर वो इनको कोई जवाब ना दे सकेंगे। और हम क्या करेंगे, वजालना बैनहुम मौबिका, और हमने इनके दरमियान हलाकत की घाटी हायल कर दे, और हम इनके दरमियान हलाकत की घाटी हायल कर देंगे। ये जो मौबिका का लफ्ज है ना, वबका से है, वाव बाका हलाक होने वाला, वाबिक उसी से लफ्ज मौबिक है, जो किसी को हलाक करवाए। मतलब क्या है, ये सारी शख्सियात चाहे अंबिया की हों चाहे औलिया अल्लाह की हों या फरिश्तों की हों, क्यामत के दिन इनकी बातों को मानकर और इनके पीछे चलने वालों को और इनको दूर कर दिया जाएगा, बीच में एक हाइल कर दी जाएगी चीज, ताकि इनको पता चल जाए कि वो इनकी मदद को नहीं आएंगे। देखिए इंसान जिनको भी पूछता है वो दो किस्म के है ना, एक वो है जो कहते हैं कि हमें पूजो, उनकी तो बात ही अलग है। यहां तो वो लोग भी मौजूद हैं कि जो बेचारे सारी जिंदगी तौहीद का प्रचार करते गए, इल्म की खिदमत करते गए, लोग उनके बारे में ये बातें नहीं करते, लोग उनके बारे में ये सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये हमारी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र ना करो कि क्यामत के दिन ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि नहीं, करना चाहेंगे भी तो हम तुम्हारे और उसके बीच में रुकावट डाल देंगे। वराल मुजरिमो नन्नार, और मुजरिम लोग आपको देखेंगे, फजन्नु अन्नहुम वाकिउहा, और वो गुमान करेंगे, जान लगेंगे, यानी इट विल लुक लाइक, उनको लगेगा ऐसा क्या कि वो तो इसमें डाले ही जाने वाले हैं। मवाकिउन था ये लफ्ज, मवाकिउन की जमा, ये आगे भी पढ़ेंगे, सूरत वाकया में भी आता है, शायद सूरत नजम में भी आता है, मवाकिउन नुजूम, गिरने की जगह, वाका कहते हैं गिरने को। ये जो लफ्ज उर्दू में बोलते हैं ना वाकया, ये है तो वो भी यही है, उर्दू में बोलते हैं वकू पजीर हुई बात, वो भी इसी से है। तो वाकया वकू वाका यानी गिर पड़ना, यानी ये मुजरिम जिनको लगेगा कि किसी भी लम्हे हमें कोई धक्का देगा और हम जहन्नुम में गिर जाएंगे। वलम यजीदू अनहा मसरिफा, और वो नहीं पाएंगे इससे बचने की कोई जगह। देखिए इन सारी आयात में जो थीम निकला ना, वो शिर्क का निकला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी उस वक्त शिर्क का शिकार थे, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के रास्ते में रुकावटें डालते थे, और बहुत सारे लोग उनकी बातें मानते थे। यहां बीच में सिर्फ एक जुमले में इबलीस की बात करके अल्लाह ताला ने क्या बता दिया कि ये इबलीसियत होती है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर बंदा ना माने, तकब्बुर होता है, बड़ाई होती है, वो ही नहीं मानता जिसको जिसके दिल में अपनी बड़ाई नहीं गई। तो जितनी अल्लाह ताला की बड़ाई आती है उतनी अल्लाह की बात की भी बड़ाई आ जाती है। और यहाँ आप ये भी देखिए कि वो जिन्नों में से था, तो क्या सारे जिन इबलीस हैं? नहीं, जिन्नों में भी अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छे जिन जो होते हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जो खराब जिन हैं वो शयातीन कहलाते हैं, और वो दुनिया में फिर लोगों को बहकाने की कोशिशें करते हैं। अब अगली आयतों में कुरान पाक की तारीफें हैं कि किस तरह से लोग कुरान को समझते नहीं है जबकि अल्लाह ने उसको खोल खोल के बयान किया। आयत 54, वलकत सर्रफ नफी हाजल कुरआन मिन कुल्ली मसल, और हमने फेर फेर कर बयान कर दी है इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए हर किस्म की मिसालें। सही, यही आयत 89 सूरत बनी इसराइल में भी पढ़ चुके हैं, बार बार घुमा घुमा के, ऐसे ही है ना। क्यों कुरान में एक ही मौजू बार बार आता है? ताकि किसी वक्त हो सकता है आप उस वक्त बैग से कुछ और ढूंढ रहे थे, आपने सुना ही नहीं, उस वक्त हो सकता है आप वॉशरूम में चले गए थे, उस वक्त आप कोई फोन कॉल सुन रहे थे, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, आप उस दिन छुट्टी फरमा रहे थे, अल्लाह ने कहा चलो एक दफा फिर इस आयत को ले आए। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है, एक बात बार बार कौन कहता है, बार बार कौन करता है, माँ करती है। बेटा ध्यान से जाना, जैकेट पहन लेना, सड़क देख के पार करना, अच्छा पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया। तो ये बार बार जो होती है ना, इससे चिढ़ना नहीं चाहिए, इससे मोहब्बत को महसूस करना चाहिए। और वही रब जिसने ये सब पैदा किया, जिसको सब पता है, वो बताता है, वकान अल इंसानो अक्सर शयइन जदला, लेकिन इंसान तमाम मखलूक से बढ़कर झगड़ालू है। देखिए सूरह बनी इसराइल की आयत 89 के पहले हिस्से में शुरू के यही लफ्ज हैं जो इस सूरत के शुरू में, लफ्जों की तरतीब में थोड़ा सा फर्क है, दोनों आयतों के आखिरी हिस्से मुख्तलिफ हैं। बनी इसराइल की आयत के आखिर में क्या आया था आपको याद तो नहीं होगा अपने हाफ़िज़े से, फा अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा, बस इनकार किया अक्सर लोगों ने नफरत के साथ, या भागते ही गए। और यहाँ क्या आ गया, वकान अल इंसान अक्सर शयीन जदला। कौन कह रहा है? इंसान को पैदा करने वाली हस्ती बता रही है कि इंसान बड़ा झगड़ालू है। और ये सच है कि इंसान झगड़ालू है। इंसान हकीकत में अपने आप को अगर देखे ना, तो उसकी तबीयत के अंदर अपना फायदा हासिल करना है। और वो झगड़ता क्यों है? ताकि मैं ज्यादा फायदा ले लूं। बुखल की वजह से झगड़ता है, दूसरों का हिस्सा लेने के लिए झगड़ता है, इताद से रुकने के लिए झगड़ता है। उसको लगता है कि छोड़ो, बात मान ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लिहाजा वो झगड़े 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 करना चाहता है। हजरत अली रजील्ला तला फरमाते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। हम दोनों, यानी मैं और फातिमा, हम दोनों को मुखातिब करके कहा, तुम लोग तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्या हमने कभी अपने शादीशुदा बच्चों और बच्चियों को कहा जाके? हम कहते तो नहीं, शादी के बाद वो ससुराल का मसला हमारा नहीं है। हालांकि अल्लाह ना करे बच्ची को आग, एक दुपट्टे को आग लग जाए, तो हम नहीं कहेंगे कि ससुराल वाले आके बुझाएं, हम बुझाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी, ये इस पे एक पूरा दर्स है कि शादीशुदा औलादों को भी क्या माँ बाप दीन की तबलीग करेंगे। हमारे कहते जी हमारे घर से पहनी ओढ़ी गई थी, हमारे घर से वो जी पर्दों में गई थी, हमारे घर ऐसी थी, अब क्या क्या करें फिर उसका ससुराल ऐसा है। पूछ होगी, शादी कर देने से बच्चों की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती? ये वो नुक्ता है जो दुनिया से शुरू, दुनिया में आने से पहले साथ लगता है और आपके दुनिया से जाने के बाद भी रहेगा। दूसरे लफ्जों में कह दूं कि औलाद और माँ बाप का रिश्ता वो रिश्ता है जो दुनिया में आने से पहले ही जुड़ जाता है और हमारे दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटता। तो अल्लाह ताला क्यामत के दिन हमारे बच्चों की नेकियां और गुना अलग नहीं करेगा। अच्छा, शादी से पहले के गुना थे, डाल दो इसके पलड़े में, और शादी के बाद के हैं तो बस छोड़ दो, अब ये इसके ससुराल के पलड़े में डाल दो। तो इसको जरा नोट कीजिएगा। यहाँ क्या कहा जवाब में उन्होंने? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नफ्स अल्लाह के हाथ में है, वो चाहेगा तो हम उठ जाएंगे। यानी उन्होंने जरा अदा से कह दिया कि अल्लाह चाहेगा तो उठा लेगा हमें। तो ये सुनकर आप फौरन वापस आ गए और अपनी रान पर हाथ रखकर फरमाया, वकान अल इंसान अक्सर शयीन जदला। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो आज भी तो लोग झगड़ते हैं ना, कई लोग हैं। यानी हजरत अली ने अपने कसूर का इतराफ करने की बजाय कि नहीं उठे तहज्जुद पे, मशीयत इलाही को उजर पेश कर दिया कि अच्छा भी अल्लाह ने नहीं उठाना चाहा, और उस इख्तियार की तरफ तवज्जो ना की जो अल्लाह ने इंसान को दिया। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान झगड़ालू है। और आप जरा अपने ऊपर भी नोक्ता कीजिए कि मैं कितनी झगड़ालू हूं। आप डिफरेंट केसेस अपने सामने रखें जिससे आपको दिन रात में वास्ता पड़ सकता है। कभी वंस अ वाइल पड़ता है, कभी मंथली पड़ सकता है, कभी महीने हफ्ते में एक दफा, कभी दिन में एक दफा। खुद से पूछें कि झगड़ा जब होने वाला होता है उस वक्त मेरा रवैया क्या होता है। बल्कि इस पे एक सीडी भी है, झगड़े क्यों होते हैं। अक्सर आप लोगों की गाड़ियों में मैंने सुनी है जब कभी जाती आती हूँ इधर उधर, झगड़े क्यों होते हैं। झगड़े अच्छे नहीं होते, इससे सुकून खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और झगड़े को प्यार में बदल दें, ढाल दें, उस वक्त बात मजाक में ले जाएं, अच्छे तरीके से ले जाएं। इसलिए कि ये वो चीजें होती हैं कि जिनमें पड़ने से जिंदगी का हुस्न ही खत्म हो जाता है, फिर और झगड़ा होता है। जिस बात की वजह से हम सब्र नहीं कर पाते और झगड़ जाते हैं ना, हमारी बात की वजह से फिर झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा पीसफुल रखे। अब बचपन आए तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला कोई चीज पेश कर रहा है लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। देखिएगा, वमा मनन ना सईयो मिनो इस जाहुमुल हुदा, और नहीं रोका लोगों को किसी चीज ने जब इनके पास हिदायत आ गई कि वो ईमान लाए। और क्या करें? वयस्तगफिरू रब्बहुम, और अपने रब से मगफरत मांगे। अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी से मिलती हुई आयत सूरह बनी इसराइल में 94 में भी आई थी। दोनों आयत के पहले हिस्सों के अल्फाज तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आगे आके इधर क्या कहा, इल्ला अंतातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, मगर ये कि इनसे पहलों का तरीक बरता जाए। क्या पता चला कि जो लोग हिदायत आ जाने के बाद भी ईमान नहीं ला रहे और अल्लाह के हजूर इस्तिगफार नहीं कर रहे, तो इसकी वजह सिवा इसके और कुछ नहीं कि इनके लिए भी पिछली कौमों का सा अंजाम लिखा जा चुका है। यानी इनकी बदबख्ती है कि सारे रिसोर्सेस मौजूद है, सारे मौके मौजूद है, फिर भी ये हिदायत को लेना नहीं चाहते, या फिर इंतजार कर रहे हैं किस बात का, औयात या हमुल अजाब कुबुला, या ये चाहते हैं कि इनके सामने अजाब आ जाए, इनके मुकाबले पे आ जाए, बिल्कुल इनके फ्रंट पे अजाब आ जाए और फिर मानेंगे। तो अल्लाह की तो ये सुन्नत नहीं है कि जबरदस्ती किसी के जिम्मे हिदायत थोप दे। गाइडेंस इज अ गिफ्ट, हिदायत एक हदीया है। आप किसी को कोई तोहफा दें और वो कबूल ना करें तो क्या आप जबरदस्ती दे देंगे? आप किसी को बड़े प्यार से कोई चीज पेश करें और वो आगे से मुंह फुला ले, तेवरियां चढ़ा ले, मुंह दूसरी तरफ कर ले, पुश्त फेर ले, आप देंगे उसको? आप कहेंगे नहीं लेती तो ना लो। तो क्या अल्लाह बेकदरों को हिदायत दे दे? अल्लाह ना बेकदरों को अल्लाह ताला अपना दीन दे दे? हिदायत क्या अल्लाह की किताब है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का नबी है, इस्लाम है। आप हैरान होंगे, इमाम बुखारी की जिंदगी से अगर आपको हैरत हो रही है ना, तो आपने तो भी एक शख्सियत पढ़ी है। आप ऐसी हजारों शख्सियत पढ़ सकते हैं तारीख में, इनको अल्लाह ने हिदायत पेश की, इन्होंने कबूल कर ली। जो हिदायत को रिजेक्ट कर देता है ना, फिर उसको नहीं चाहिए होती। तो ना शुक्रे लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता, ना कदरे लोगों को नहीं देता। अल्लाह कहते हैं हमारी सुन्नत क्या है, आयत 56 में वही मजमून आगे जा रहा है, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबशिरीन व मुनजिरीन, और हम नहीं भेजते रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने वाले बनाकर। अब यहां देखिए, रसूलों के साथ जमा के सीगे में आया ना, तो सूरत बनी इसराइल में ये वाहिद में नबी सल्लम के लिए आया था कि वह मारसलना का इल्ला मुबशिर व नजीरा। कभी आप खेले हैं कुरान की आयतों से इस तरह, अगली उधर पिछली इधर? जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, उसके अंदर इंसान गौर व फिक्र करता है। हम ये देख रहे होते हैं मसाला कौन सा खत्म है, फ्रीजर में गोश्त कुछ कम तो नहीं हो गया, फ्रिज ये सही जरा बंद होने लग गई है, इसके अंदर फिर ग्रोसरी चाहिए। और हमारे यहाँ ग्रोसरी की आदत है कि फ्रिज को धक्का मारो पीछे से, हाथ से नहीं बंद होती, फिर उसको पीछे कमर से पुश मारो फिर बंद हो, कहते हैं शुक्र है खाना। हमारी जिंदगी इन चीजों में खो गई, हम कहाँ खो गए? अल्लाह कहते हैं हमने नबियों को जिस काम के लिए भेजा था, तुम अपनी जिंदगी देखो तुम क्या काम करते हो। मुबशिर और मुंजिर, अपना नाम पूछिए, क्या मैं मुबशिरा हूं और मुंजिरा हूं? ये है वो काम जिसके लिए जिंदगियां लगाई। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी की जिंदगी उस पर लगी ना, तो अल्लाह के नबी की हदीस लिखने वालों की भी जिंदगियां उसी पे लगी। तो सहाबा कराम जिनको अल्लाह के नबी ने अपने बाद पीछे नायब बनाया था, उनकी भी जिंदगी ऐसे थी। पढ़ते जाएं सहाबा, जो खुलफाए राशिदीन है, इमाम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि किसी ने उनको ईद वाले दिन देखा तो सूखी रोटियां पानी में डुबो के खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ईद का दिन है और आप सूखी रोटियां खा रहे हैं, पुरानी रोटियां पानी में? तो कहते हैं कि मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मेरा रब मुझे कहेगा कि अली जा मैंने तुझे माफ किया। ये फर्क है, ये है अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, बाकिया तो सालेहत तरजीहात बदली हुई है। देखिए आप इस तरह समझिए कि जैसे जूता लेके आए और राइट फुट को लेफ्ट में डाल लें और फिर आपके चला ही नहीं जाता, ठीक, जूती अच्छी नहीं बनाई, कंपनी खराब है, ले जाए उस जूती को वापस। और उन्हें कहिए आपने कैसी जूती बनाई, आप तो कह रहे थे बड़ी आरामदेह, चलना तो छोड़े मैं तो भाग सकती हूँ, लेकिन मैं तो इसको पहनती हूँ तो मैं तो दो चंद कदम पड़ती हूँ तो गिर पड़ती हूँ। वो कहेगा दिखाओ, पहन के दिखाओ। तो आप उसके सामने जरा राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में पहने, तो जवाब मिल जाएगा ना उसको कि आपने तो जूती उल्टी पहनी है। हम जूती बनाने वाले की बात इतनी मानते हैं कि वो कहता है राइट में डालो तो राइट में डालते हैं, लेफ्ट में डालो तो लेफ्ट में डालते हैं। दर्जी आपकी कमीज सीता और वो आपको बता देता है ये कमीज का अगला हिस्सा है, ये पिछला। दुनिया के छोटे छोटे काम करने वालों का आज अल्लाह और उसके रसूल की दावत को हम कितना कबूल करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम, सूरह अनफाल में पढ़ चुके हैं। क्यों? लिमा युहयीकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल करो, लब्बैक कहो, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी है। जब तक मुसलमानों ने मुबशरीन और मुंजरीन के मिशन को कायम रखा, अमन था, दुनिया में चैन था और सुकून था। आज हम क्या बने? अब जरा थोड़ा सा लफ्ज देखिए, नबी मुबशिर किसके लिए होते हैं? अच्छे काम करने के लिए ना। और मुंजिर किसके लिए होते हैं? बुरे काम करने के लिए। अब इमेजिन कीजिए, जो शख्स बुरे काम कर रहा है, जो खुद बुरे काम कर रहा है, उस वक्त उसको नबी क्या लगेगा? नबी से मुराद दीन की दावत देने वाला अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा ना। जब कोई बंदा खुद काम नहीं कर रहा था, अब मिसाल है तहज्जुद, नबी से सल्लम की कोई हदीस जाके बयान की जाती है कि तहज्जुद पढ़ने वालों को इतना अजर है, उस महफिल में एक नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ता, मुझे सच बताइए कि उस हदीस को सुनकर उसको खुशी होगी? वो तो साइड बल्टेगा होगा। तो गोया कि यहां बाप का वो उसूल उलट हो गया कि हमेशा मुंजिर बुरे काम करने वालों के लिए नहीं होते, बल्कि जो नेकियां नहीं कर रहे होते उनको भी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। यानी नबियों का बिशारत देना भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता जो खुद वो अमल नहीं कर रहे होते। आज के दौर का मुसलमानों का मसला ये है, क्योंकि हम नहीं मान रहे तो हमें बताओ भी ना। अच्छा भाई कोई बता रहा है, बताने दीजिए, आप ना माने, कहते नहीं नहीं फिर गिल्ट होता है, फिर ये सख्त बातें लगती हैं। बस कहो कि आज के दौर में ऐसे ही ठीक है, बस कह दो ऐसे ही ठीक है, यही होगा वही होगा। यकीन करें, अगर आप इस काम को अपनी जिंदगी का मिशन बनाएंगे ना, तो मरने के बाद भी आपका दिल नहीं मरेगा, कभी आप मुर्दा दिल नहीं होंगे। इतना रिलैक्स, इतनी खुशी, इतना कुछ कि आप सोचेंगे कि इससे भी मजे की कोई जिंदगी होगी। एक दफा आप इस मिशन के अंदर पांव रख के देखें। मैं अक्सर सोचती हूँ इस बात को, और आप भी बहुत कुछ सोचते होंगे, आपकी भी काफी काम है, फिर सोचने वाले तो मेरे भी हैं कुछ काम। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिसको एक दफा हिदायत समझ आ जाती है, अब ये पिछली आयतों के साथ इसका रब्त है, जिसको एक बार हिदायत समझ आ जाती है, फिर वो छोड़ता क्यों नहीं है उस रास्ते को? आप आजमा के देखें, जिधर भी, मैं अपनी बात नहीं करती, हमारा तो कोई इतना लंबा चौड़ा सिलसिला ही नहीं है अभी, लेकिन मैं कई लोगों को देखती हूं कि जब कुरान पढ़ा फिर समझ आ गया, फिर वो आज 10-15 साल हो गया उन्होंने नहीं छोड़ा। वो नहीं कहते खत्म करो अब हमारी जॉब, छोड़ो चलते हैं इधर उधर, थक गए हैं बस, बहुत परेशान हो गए हैं, और वो इतना इंजॉय करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं। बस दफा आप देखिए कि हम क्लास लेते हैं, पता नहीं आप इंजॉय करते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो ये फन टाइम होता है। आप तो बोझ में होंगे, ऑफकोर्स जब आप सुन रहे हैं तो आपको दिल होगा, लिखे नोट करें, सुनने वाला स्ट्रेस में होता है, मुझे पता है, मैं भी इस दौर से गुजरती हूँ और गुजरी हुई हूँ, लेकिन सुनाने वाले को ऐसे लग रहा होता है कि डिलीवर डिलीवर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अगले को सौंप दी, ऐसे लगता है कि एक अमानत है सीने में, वो दूसरे को दे दें। और फिर इसके बाद मीटिंग्स, और इसके बाद ट्रेनिंग सेशन, और जो उसमें इंजॉयमेंट होती है, वल्लाही। आप रात को एक बहुत ही मजे का वाक्य हुआ, मैं बाद में भी उसको सोच के हंसती रही। हमारी एक मीटिंग थी ऑनलाइन पे, सारे साथी साथ होते हैं एक ही जगह पे, तो वो मीटिंग थी। अब जब हम उसमें थे तो और जिनको एक को हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसमें नहीं थी, तो मैंने पूछा कि वो नहीं है, तो जो साथी मौजूद थे उनमें से एक बोले वो उनकी बेटी रो रही होगी ना, इसलिए वो अभी नहीं आई ना। खैर, मैंने कहा कि ठहर जाए, वो आ लें तो मैं आपको उनकी शिकायत लगाऊं। थोड़ी देर बाद वो आई तो मैंने उनका नाम लेके मैंने कहा कि मैंने आपको एक शिकायत लगानी है कि इन्होंने आपकी बेटी की बुराई की है। क्या आपकी बेटी बाकी रो रही थी? तो मैंने कहा सोचे कल क्यामत के दिन ये बच्ची आपको गिरेबान पकड़ सकती है, आपने हम एक मासूम बच्ची पे बात लगा दी कि वो रो रही होगी इसलिए उसकी अम्मी मीटिंग में नहीं आ पा रही। हम बाज़ दफ़ा ज्यूम कर लेते हैं ना, तो वो एक किस्म का एक जोक वाली कैफियत बन जाती है कि बाज़ दफ़ा जब दीन का काम साथ लोग करते हैं और इंजॉयमेंट होती है और इसमें जो मजा आता है और जो एक दूसरे का मिजाज हम पढ़ते हैं करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये काम किसी को थकाता है या कि बोर होता है। शर्त एक है कि आप इसको अपना काम समझें, फिर आप देखेंगे कि इस काम के क्या मजे हैं, और फिर आप कभी भी छोड़ने का तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जो नबियों को मिशन दिया होता है वो तो मिशन उन्होंने पूरा कर दिया। क्या आज हम भी इंसानियत के लिए मुबशरीन और मंजरीन का किरदार अदा कर रहे हैं? खुद से पूछिए। एक रिवायत का खुलासा है कि किसी के सामने एक हक बात हो रही हो और वो उस हक पता और ना बताए, या गलत हो और उसको ना मना करे, तो वो गूंगा शैतान है। यानी गूंगा शैतान कहते हैं उस शख्स को जो हक को छुपा लेता है। आज हम किन किन जगहों पे जाके मजबूर हो जाते हैं और लोगों को हक से दूर करते हैं। आज सिर्फ उम्मत मुस्लिमा सिर्फ इस एक काम पे बात कर ले कि लोगों को उनकी जिंदगी का मकसद और इस तरह की बातें बता दे, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका क्या नतीजा हो सकता है। यानी ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं। या फिर एक बात और जहन में आ गई, चंद दिन पहले किसी ने शेयर की कि वो किसी को, एक शख्स खड़ा था तो गुजरा था तो उसको कोई दीन की दावत दी। तो उसके बाद एक औरत पीछे से आई, उसके पास मतलब बच्चा भी था शायद। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला, कहने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुस्लिम है। एक लड़की जिसको दीन की दावत दी जा रही थी, कहने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुस्लिम है, और उसने भी मुझे काफी दफा इस्लाम के बारे में बताया है, और ये बच्चा भी उसी का। कैन यू बिलीव, समझिए बात को, कैसा इस्लाम है ये आज हमारा। और उस औरत को कल वो हमारे घर के पास नीचे आई, तो उसको हमने कुछ बुक्स वगैरह दी, इतनी उसको अर्ज लग गई कि अच्छा मुझे बुक्स ने, फिर कल वो उसने फोन पे मैसेज पे टेक्सटिंग थी, उसको कुछ इस तरह की चीजें चाहिए थी, तो नीचे लाइब्रेरी में आई तो हमने उसको कुछ बुक्स दी। यानी जब हम इस्लाम का रंग बिरंगा नमूना पेश करते हैं तो लोग कभी भी नहीं आपके पास आएंगे। सोचिए, ये बहुत बड़ा रोग है इस वक्त उम्मत को लगा हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं नबियों के साथ क्या हुआ, वो युजादिलुल्लज़ीना कफरू बिलबातिल, और ये काफिर लोग झगड़ते हैं झूठ की तरफ से, यानी साइड लेते हैं झूठ की। ये मुराद है, बिल बातिल है ना, तो बा साथ के लिए होता है, उसके हक में झगड़ते हैं, किसके बातिल के, क्यों, लियुदखिदु बिहिल हक का, ताकि फिसला दें इसके साथ हक को। यानी बातिल लोगों को तो देखें कितना अच्छा काम करना आता है, कि जहां जरा हक बात आती है वो सारे मिलके हक को पीछे धक्का दे देते हैं, ताकि हक भाग जाए। कट हुजतियां, बहसें, चैलेंजेस, और इस्लाम पे इल्जाम, नबी पे इल्जाम करते हैं, ताकि हक चला जाए, हक चला जाए, हक चला जाए। और वत्तखज़ु आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुआ, और उन्होंने मेरी आयात को और इस चीज को जिसके साथ इन्हें खबरदार किया गया था मजाक बना लिया। यानी इतनी जरूरत है इन काफिरों की कि अल्लाह के कलाम की आयात को मजाक बनाते हैं। क्या मैं और आप अपना मजाक उड़वा सकते हैं? क्या हम अपनी बात का मजाक उड़वा सकते हैं? हमें पता लग जाए ना कोई बात में आपके जाने के बाद आपका मजाक उड़ा रहा था, आपके बोलने का अंदाज, आपके बैठने का, आपके पहनने का, आपके कपड़ों का, तो हम कहेंगे अच्छा वैसा है, ये तो शुक्र है हमें पता ही नहीं है लोग हमारे बारे में कहते क्या कुछ और सोचते क्या है और आपस में जिक्र क्या करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अल्लाह को तो सब पता होता है। जब लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह की बातों को इस तरह हंसी मजाक करते हैं, तो क्या फिर अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आता होगा? ये किस किस्म का आप इस्लाम लोगों को दिखाते हैं कि आप उनके साथ अपने नफ्स की ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, आप उनके साथ अपना भी सारा शौक पूरा करते हैं, और फिर कहते हैं यस इट्स इस्लाम, ये इस्लाम का मजाक है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं असलम मिम्मन ज़ुक्किरा बि आयाति रब्बिही। अब यहां से गई हो इसके रब की आयात के जरिए से, यानी जिसको कुरान से रब की आयात के जरिए समझा दिया फिर ना माने, फारदनहा, तो इसने एराज किया, व नसीया मा कद्दमत यदा, और वो इसे भूल गया कि क्या आगे भेजा है इसके दोनों हाथों ने। क्या समझे, बजाय इसके कि ईमान लाए, पिछले गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की आयतों को माने, उससे रूगरदानी को छोड़े, और जिद में आ गया, हठ धर्मी में आ गया कि अपने अमाल के अंदर और खराबियां पैदा करने लगा, तो फरमाया ये इस बात की दलील है कि इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, यकीनन हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं। अकिन्ना किनान की जमा, पर्दा, कर्टन, दिल पे जो पर्दा आता है ना, किस बात का, अय्यफ़क़हू, कि वो इसको समझे, वफी आज़ानिहिम वक़्रा, और इनके कानों में बोझ है, वक़्र, गिरानी, बोझ, हैवीनेस। बिल्कुल यही बात सूरह बनी इसराइल की आयत 45 में हम पढ़ चुके हैं, वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैन अल्लज़ीन ला युमिनून बिल आख़िरति हिजाबं मस्तूरा, कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दरमियान पर्दा हायल कर देते हैं, तो जो नहीं सुनता ना उसको सुनना मुश्किल लगता है, जो अमल नहीं करता उसको पढ़ना भी मुश्किल लगता है, हाल क्या इनका हो जाता है, वइन तदउहुम इलल हुदा, और अगर आप बुलाएं इनको हिदायत की तरफ भी, फलन यहतदू इजन अबदा, तब भी वो कभी हिदायत नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि हक वाजे होने के बाद जब बंदा हठ धर्मी इख्तियार करता है ना, तो दिल पे मोहर लगती है। आसान करके समझाऊं, 15 पारे आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिए, जो हकीकत मेरे और आपके ऊपर खुल चुकी है ना, ये बाहर वालों पे भी नहीं खुली जो यहां नहीं आए, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा। अब मैं और आप इस हक को वाजे होने के बाद भी अगर रिजेक्ट करें, ओवरलुक करें, अमल ना करें, तो दिल पे मोहर लग जाएगी। और मोहर लगना ऐसे जैसे खाना पेट में फंस गया, पेट से निकल ही नहीं रहा तो और कैसे डलेगा। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि पेट से गंदगी नहीं जा रही। जब कुरान की बातों को सुनकर उस पे अमल नहीं करते, आगे से लेने को दिल ही नहीं करता, फिर बोझ लगता है, फिर कहते हैं मुश्किल लगता है, हमें लगता है सब कुछ हमें सुनाते हैं। ये बहुत जजमेंटल कुरान है, ये कुरान बहुत सख्त है। सब कुछ डाल के ब्लेंडर में स्मूदी बनाया हुआ कुरान चाहिए, ये बहुत मुश्किल, ये हम नहीं कर सकते। और शैतान को सबसे ज्यादा इल्म बुरा लगता है, किताब की तालीम बुरी नहीं लगती, किताब का पढ़ना बुरा नहीं लगता, हिफ्ज करना बुरा नहीं लगता, उसकी आयतों को खूबसूरत तरह से लिखना बुरा नहीं लगता, उसको किताब का पढ़ना बुरा लगता है। और ऐसे लोग फिर हिदायत से दूर रह जाते हैं, फिर बचे हुए कैसे हैं अल्लाह की रहमत से? इसीलिए अगली आयतों में रहमत का जिक्र है, आयत 58, वरब्बुकल गफूरुर रहमा, और आपका रब बहुत बख्शने वाला, बहुत रहमत वाला है। लो यू आप बीमा का सबू, इनके कामों पर या इनका मुआवजा करता इनके आमाल की वजह से, ला अज्जल लहुमुल अज़ाब, तो बहुत जल्दी भेज देता इन पर अजाब। जैसे माँ बर्दाश्त नहीं करती ना बच्चे की गलती पे, झट से थप्पड़ मारती है ना, अगर अल्लाह रहम वाला ना होता ना, तो इधर किसी ने बुरा काम किया ऊपर से एक कोड़ा पड़ता, एक थप्पड़ पड़ता, हंटर पड़ता। ऐसा नहीं करता अल्लाह, क्योंकि वो जू रहम है, गफूर है, अल गफूर है, रहमत वाला है। यही बात सूरह नहल आयत 61 और फातिर 45 में भी आती है कि अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म और बुरे आमाल पर पकड़ने लग जाता तो जमीन पे तो एक जीता हुआ शख्स न रहे। बल लहुम मौईदुन लन यजिदु मिन दूनिही मौईला, बल्कि इनके लिए वादे का एक वक्त मुअय्यन है और वो हरगिज नहीं पाएंगे इसके सिवा बचने की कोई जगह। क्यों अल्लाह इनको ढील दे रहा है? कि अभी इनकी पकड़ का वक्त ही नहीं आया। ये जो लफ्ज है ना मौईला, वाल से, वाव हमजा लाम इसम ज़र्फ है, कि जब किसी के वादे की मुकर्रर घड़ी अजल आ जाएगी, फिर इसे कोई जाय पना नहीं मिलेगी कि इससे सिरक कर इधर से उधर हो जाए। क्योंकि सूरत नहल आयत 61 में भी हम पढ़ चुके, फैजा जा हम अजलुहुम, फैजा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून सा'अतन वला यस्तक़दिमून, और जब आ जाता है इनमें से किसी का वक्त मुअय्यन, तो ना वो पीछे रह सकते हैं एक लम्हा और ना आगे बढ़ सकते हैं। तो पता क्या चला इस आयत से, कि लोगों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह उनको भी क्यों नहीं पकड़ रहा? क्योंकि अभी वक्त नहीं आया। एक वजह अल्लाह गफूर है, दूसरी वजह रहीम है, दूसरी वजह कि उसके पास हर चीज का एक वक्त होता है। और आखिरी आयत में इसको अमली तौर पे दिखा दिया कि व तिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमु, और ये हैं वो बस्तियां जिनके वासियों को हमने हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म इख्तियार किया। कौन सी बस्तियां? कौमियात की बस्तियां जो अहकाफ में बसती थी, इलाका हिजर के लोग हों या एका के लोग हों, आमूरा और सदूम के लोग हों, सब अल्लाह के इस कानून की वजह से हलाक हो गए। वजालना ली महलिकिहिम मौईदा, और हमने मुकर्रर कर दिया था इनकी हलाकत के लिए वादे का एक वक्त। तो जब अल्लाह की पकड़ आती है तो दो तरह से आती है, एक होती है इनफिरादी पकड़, एक होती इज्तमाई पकड़। इनफरादी पकड़ तो हर वक्त आ रही है, ये समझ लें बड़ा अहम नुक्ता है। अल्लाह सुबहाना ताला पर्सनल लेवल पे हर बंदे को उसके गुनाहों की सजा फौरन देते रहते हैं, लेकिन इज्तमाई यानी कौमी तौर पे एज अ नेशन अल्लाह ताला लोगों को मोहलत देते हैं। क्योंकि हमारी अपनी उम्र 50-60 साल तो होती है सारी, तो अल्लाह ताला फिर उसमें हमें जल्दी से पकड़ लेते हैं। कौमों को अल्लाह बाद 100-100, 200-200 साल की मोहलत देता है, और कह लीजिए कि इस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा की मोहलत के सालों में से गुजर रहे हैं। ये छोटे छोटे जो थपेड़े पड़ते हैं ना, कभी सैलाब के और कभी लड़ाइयों के और कभी सियासतदानों के झगड़े, ये सब क्या है? ये अल्लाह की अजाब की किस्तें हैं। समझ जाएंगे तो बात समझ आ जाएगी, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। तो ये था आज का सबक जिसने हमें पहुंच दिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा दिल खोल दे। हम किस तरह से इस दुनिया के दजल में आए हुए हैं। सीखना क्या है कि अपने आप को जाया नहीं करना, बाकियात तो सालियात में ढाल दें। अपने आप को जिस एंगल से भी छान फटक सकते हैं ना फटक लें। ऐसा चूंकि इसमें नामे अमाल की बातें आई, आखरत की बातें आई, तो इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए चंद रिवायात बस एंड पे शेयर करूंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सबक पूरा हो जाएगा। ये सारी रिवायत मैंने हम सब इधर उधर गए और छाल, लकड़ी, पत्ते, कांटे, धार, दरख्त, झाड़, जंगल जो मिला लेकर आ गए। ढेर लग गया। आप सोचे ना, सब छोटी छोटी चीजें लेके आ गए तो ढेर लग गया। तो आपने फरमाया, देख रहे हो, इसी तरह गुना जमा होकर ढेर लग जाता है। अल्लाह से डरते रहो, छोटे बड़े गुनाहों से बचो, क्योंकि सब लिखे जा रहे हैं और शुमार किए जा रहे हैं। जो खैर और शर, भलाई और बुराई जिस किसी ने की होगी, इसे मौजूद पाएगा। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन, और आगे भी हम पढ़ेंगे सूरह क़यामत में भी आता है, युनब्बल इंसान बिमा कद्दम वाखर। एक जगह आता है, यौम तुबल सराइर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर बदहद के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा, इसकी बदहदी के मुताबिक जिससे इसकी पहचान हो जाएगी। यानी जो लोग वादे तोड़ते हैं, कमिटमेंट्स तोड़ते हैं, अहद छिकनियां करते हैं, क्यामत के दिन उनके हाथ में उतना ही बड़ा झंडा होगा जितनी बद छिकनी की होगी, बदहती की होगी। हदीस में कि ये झंडा इसकी रानों के पास होगा, यानी थाइस के पास, और ऐलान होगा कि ये फलां बिन फलां की बदहदी है। तेरा रब ऐसा नहीं कि मखलूक में से किसी पर भी जुल्म करे, हाल बता दरगुजर करना, मुआफ कर देना, अफ करना, ये उसकी सिफत है। वो बदकारों को भी अपनी कुदरत और हिकमत और अदल से सजा देता है। जहन्नम गुनाहगारों और नाफरमानों से भर जाए और काफिरों और मुशरिकों के सिवा और मोमिन गुनाहगार छूट जाए। अल्लाह जरा भी ज्यादती नहीं करता। मुसनद अहमद में आता है कि हजरत जाबिर कहते हैं कि मुझे एक रिवायत पहुंची कि एक शख्स ने नबी सल्लम से एक हदीस सुनी है। अब नोट कीजिएगा, इल्म का सफर अगले सबक में ही आ रही है ये बात। एक हदीस सुनने के लिए, हदीस पहले सुन ली थी लेकिन हदीस की चेन में अपने नाम को डायरेक्ट करीब करने के लिए कहते हैं कि मैंने एक ऊंट खरीदा, सामान कसकर सफर किया, महीना भर के बाद शाम में इनके पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह अन्हु है। मैंने दरबान से कहा, खबर कर दो कि जाबिर दरवाजे पर आया है। उन्होंने पूछा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला? मैंने कहा जी हाँ। ये सुनते ही जल्दी के मारे चादर संभालते हुए झट से बाहर आ गए और मुझे लिपट गए और मुआनकस किया, यानी हक दिया। फारिग होकर मैंने कहा, मुझे ये रिवायत पहुंची है कि आपने कसास के बारे में कोई हदीस रसूलुल्लाह से सुनी है। तो मैंने चाहा कि खुद आपसे मैं वो हदीस सुन लूं, इसलिए यहां आया हूं, और सुनते ही सफर शुरू कर दिया इस खौफ से कि कहीं इस हदीस के सुनने से पहले मैं मर ना जाऊं या आपको मौत ना आ जाए। यानी हम दो में से कोई एक मर गया तो मैं महरूम रह जाऊंगा इस चीज से कि मेरा नाम इसमें आ जाए। अब आप सुनाइए वो हदीस क्या है। इतना शौक है जेल का, अब हदीस सुने तो फिर आपको और भी शौक आएगा। आपने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन अपने तमाम बंदों का अपने सामने हशर करेगा, यानी बिल्कुल अपने सामने इकट्ठा करेगा, नंगे बदन, बेखतना, बेसरो सामान। फिर इन्हें निदा करेगा जिसे दूर और नजदीक वाले सब यकसां सुनेंगे, यानी यहां बैठे हुए भी और वो पीछे बैठे हुए भी बराबर सुनेंगे, और फरमाएगा, मैं मालिक हूं, मैं बदले दिलवाने वाला हूं। कोई जहन्नमी उस वक्त तक जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक इसका जो हक किसी जन्नती के जिम्मे हो मैं उसको वो ना दिलवा दूं। यानी वो जन्नत में जा रहा है लेकिन पहले हक पूरे करवाएगा, और ये जहन्नम में नहीं जा सकता, और ना कोई जन्नती जन्नत में दाखिल हो सकता है जब तक कि इसका हक जो जहन्नमी पर मैं ना दिलवाऊं, गोया कि वो एक थप्पड़ ही क्यों ना हो। हमने कहा, अल्लाह के नबी, ये हक कैसे दिलवाए जाएंगे हालांकि हम सब तो वहां नंगे पांव, नंगे बदन, बे माल और बे असबाब होंगे, यानी है ही कुछ नहीं के बदले में दें क्या। तो आपने फरमाया, हाँ, उस दिन हक नेकियों और बुराइयों से अदा किए जाएंगे, वहां नेकियों को इधर उधर पलटाया जाएगा। फरमाया आपने कि बेसींग वाली बकरी को अगर सींगदार बकरी ने मारा है तो इससे भी बदला दिलवाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो करेंगे कल क़यामत के दिन वहाँ नजर आएगा, वजदू मा मिलू हादिरा। तो बहुत सोच के लोगों के साथ मामला करें, यकीन करें अब तो जुबानों को सी दें, होंठों को जिप लगा दें, कम बोलें, गौर करें, ब्रेक में भी, खाने में भी, बातों में गौर व फिक्र की आदत हो। और जब आप ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कभी तो मैं सोचती हूँ कैसे लगता है कि शायद बड़ी मुश्किल से छुटे हैं क्लास से। तो चलिए अब ब्रेक ले लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी 20 मिनट की ब्रेक है आप लोगों की, फौरन उठ जाएं, ब्रेक खाली, ये रूम खाली कर दिया करें ब्रेक में, और लाइट्स को थोड़ा बंद कर दें।